हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्म चरणं भुजसव महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमीशमीवर। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धियम् चेतश्च न स्मार्ति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्चिरैकदापि तानान यद्धममसतो अकृतवेषु कृत्या। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमोहसा महत्तामपि कौरव्या विद्यैकान्तिकनिष्कृतम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखनजो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। सतगुरुदेव महाराज की। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मा जी अत्यंत ही सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कल हमने ब्रह्मा जी के मुखारविंद से भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की कि जो अभक्तगण हैं अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्ट प्रद तथा विस्तृत कार्यों में लगाते हैं और रात में अनिद्र रोग से पीड़ित होते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक के बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख होते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते हैं। और हे प्रभु आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट कर देते हैं जिसमें सदैव वे आपका चिंतन करते रहते हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता यदि भगवान की बहुत ठाट पाट से भी पूजा करते हैं लेकिन यदि उनके हृदय में लालच होती है लालसाओं से पूर्ण होते हैं तो फिर भगवान उनकी पूजा से इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। हम देखते हैं देवता जब भी भगवान के पास जाते हैं कोई ना कोई अपनी लालसा लेकर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो वैसे तो भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में अपने अहित की कृपा दर्शाने के लिए होते हैं, लेकिन भगवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं। जो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं ना, उनके साथ भगवान इतना प्रेम नहीं करते हैं, और जो अभक्त होते हैं उनके लिए वो भले भगवान के पास आते भी हैं अपनी कोई इच्छा लेकर, भगवान उनको उनकी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन भगवान भक्त के लिए तो अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान भक्त के तो अधीन बन जाते हैं, इसलिए भगवान के पास जाएं तो भगवान के लिए जाएं, और जब भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे फिर तो कुछ और रह जाएगा नहीं प्राप्त करने के लिए। तो बहुत सुंदर रीति से ब्रह्मा जी आगे स्तुति करते हैं। श्लोक नंबर 12, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाति प्रसीदति तथो पचितो पचारे आराधितः सुरगण हृदि बद्ध कामय यत् सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नाना जनेष्वहित सुहृदन्तरात्मा नाति प्रसीदति तथो पचितोपचार आराधित सुरगण हृदि बद्ध कामय यत् सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्वहित सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति, नाति मना कभी भी नहीं, अति मना अत्यधिक, प्रसीदति मना संतुष्ट होते हैं, तथोप चित्तोपचार है, तथो मना जितना, उपचित यानी ठाट पास से, उपचार यानी पूजन या साज सामग्री से, आराधिता यानी पूजित होकर, सुरगण यानी देवता यानी देवताओं के से ठाट पाट और पूजा की विशेष सामग्री से भी पूजित होकर भी भगवान इतने नाति प्रसीदति, बहुत ज्यादा प्रसीदति नहीं होते हैं, और रिदि बद्ध काम है। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूरित हृदय होता है उनका। भगवान से प्रेम थोड़े करते हैं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। तो यत् सर्वभूत दया सदल्प भय सदलभ ययको, यत् जो सर्वभूत यानी समस्त जीव, दया उन पर अहितु की कृपा दिखाने के लिए, असत यानी अभक्त, अलभया यानी प्राप्त ना हो सकने से, होते तो वो प्रत्येक जीव के हृदय में हो हैं, लेकिन जो अभक्त हैं, अलभ्यया मतलब उनके लिए वो प्राप्त नहीं हो सकते, अलभ्यया मतलब वो असत अलभ्यया, असत मतलब जो अभक्त हैं उनको उनके हृदय में रहकर भी उसके दर्शन नहीं होते हैं। भले ही अभक्त हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय में भगवान है, लेकिन उनके लिए क्या है, अलभ्यया, उनके लिए अप्राप्य है। और एक यानी अद्वितीय नाना जनेश्व वहित, नाना मतलब विविध, जनेशु यानी जीवों में, अवहित यानी अनुभूति, सुहृत यानी शुभेच्छु मित्र, अंत भीतर आत्मा यानी परमात्मा। अनुवाद देखिए, हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक संतुष्ट नहीं होते हैं जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहित की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी भगवान के भक्त हैं, किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते। भगवान के पास ही आते हैं तो भगवान कहते हैं, भले आप कुछ भी इच्छा रखकर मेरे पास आओ, मैं आपकी उस इच्छा को पूरा करूंगा। तो वो भगवान जो हैं, देवता भी भगवान के पास जाते तो भगवान उनकी इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख तो प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे संतुष्ट नहीं होते क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों यानी जीवों में से कोई भी तीन तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के भौतिक कष्टों को लगातार भोगता रहे। वो भगवान जो अपने अंशों से इतना प्रेम करते हैं, क्या भगवान ऐसा चाहेंगे कि जीव संसार में जाकर त्रिय तापों से ग्रस्त रहे, रोज रोज जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को सहता रहे और अलग अलग योनियों में अलग अलग माताओं के गर्भों में वो भटकता रहे? भगवान कभी नहीं चाहते। भगवान तो यही चाहते हैं कि जीव जो है वो मुझे प्राप्त करके आनंदित हो जाए। स्वर्ग लोक के देवता तथा इस लोक के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखम उठाकर ऐसा करते हैं जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएं। स्वर्ग के देवता क्या चाहते हैं कि हम बार बार देवता ही बने, बार बार ऐसा वैभव प्राप्त हो, तथा इस लोक के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान अर्थार्थी भक्त होते हैं, भगवान से प्राप्त करने के लिए वो उनकी पूजा करते हैं और भगवान उनको दे भी देते हैं, तो वो इतने खुश होते हैं, बोलते हैं बस बार बार ऐसी भक्ति का चांस मिलना चाहिए, संसार में आते रहें, भगवान सुखी करता रहे और हम मजा करते रहें। तो शीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखम उठाकर ऐसा करते हैं। उनको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, हो सकता है सुख भोगते भोगते भगवत भक्ति भूल जाए और फिर इन्हीं सुखों के मोह में, उन्हीं सुखों की आसक्ति में ना जाने कितना निम्न पद उनको प्राप्त हो। कितना बड़ा जोखिम है ये कि यदि हम ये सोचते हैं कि हम बार बार जन्म लेते रहें और भगवान हमें सुखी करता रहे, तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा क्या है, वो नहीं चाहते कि जीव बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे। और जीव की इच्छा क्या है, जीव की इच्छा ये है कि मैं इस संसार में आकर बार बार सुखी होता रहूं। जबकि भगवान ने कह दिया अनित्यम असुखम लोकम, भगवान बता रहे हैं कि आ जाओ मेरे पास, तुम्हें आनंद सुख और संतुष्टि तो केवल मेरे पास रहेगी, लेकिन जीव फिर भी भगवान को बता रहा है कि नहीं, मैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करके आनंदित होकर दिखाऊंगा। भगवान की जिद है कि आप मेरे पास आ जाओ तभी सुखोगे, और जीव ने ये जिद पकड़ ली है कि भले कुछ हो जाए संसार में सुखी होना है मुझे। तो संसार की वस्तुओं ने ना कभी किसी को सुखी किया है और ना ही कभी फ्यूचर में करेगी, तो इसलिए बुद्धिमान वही है जो संसार की वस्तुओं के लिए नहीं बल्कि भगवान के प्रेम के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान के पास जाता है। हम सब भगवान में श्रद्धा रखते हैं इसीलिए हम कथा श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन केवल श्रद्धा रखना ही शुद्ध भक्त की कसौटी नहीं है। शुद्ध भक्त कैसा होता है, श्रीला प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं। वे कहते हैं शुद्ध भक्तों को ना तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, ना ही वे उससे विमुख रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको किसी वस्तु की इच्छा हो, और ऐसा भी नहीं है कि भगवान उनको कोई कृपा प्रदान करे और वो उसे नकार दे। लेकिन भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं और अपने लिए वे कुछ भी नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेहवश युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद उसने भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। अत्यंत सुंदर तर्क था अर्जुन का कि कृष्ण सामने मेरे गुरु हैं और सामने मेरे पितामह हैं, ऐसे आदरणीय व्यक्तियों के साथ तो कभी वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए और तुम उन्हें मारने की बात कर रहे हो। तब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अधर्म का नाश करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर, अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी। अर्जुन तो अपने परिवार से कितना स्नेह कर रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान ने उनको बताया कि धर्म और अधर्म में से तुमको धर्म की रक्षा करने के लिए मेरी आज्ञा का पालन करना है, तो भगवान की इच्छा के लिए उन्होंने लड़ना स्वीकार किया। अतः भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म ना करके एकमात्र भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। हमेशा भगवान की इच्छा के अनुसार यदि कोई कार्य करता है, तो ऐसा भी नहीं है कि भगवान अर्जुन की तरह हमारे सामने खड़े हैं तो हमें बताएंगे उठाओ धनुष बाण और युद्ध करो। जितना जितना हम भगवान को सरेंडर करेंगे, और सरेंडर का मतलब क्या है जानते हो, अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई ख्वाहिश भगवान को बतानी नहीं है। भगवान आप मुझे बताओ क्या करना है, आप ऐसा कर दो, ये कभी भक्त नहीं कहता भगवान से। आप क्या चाहते हो बस मुझे वो बता दो। वो भगवान तो हृदय में रहते हैं ना, भगवान आपको हृदय से तभी ज्ञान प्रदान करेंगे जब आप अपनी ख्वाहिशों की, अपनी इच्छाओं की पोटली को साइड में रख दोगे और फिर भगवान के सामने सरेंडर करके कृष्ण जो सही है वो रास्ता दिखाओ, सारे रास्ते तब खुलेंगे। हम क्या करते हैं, एक रास्ता अपनाते हैं और हृदय से चाहते हैं कि बस भगवान सेंशन कर दे कि यही रास्ता सही है और तुमको उसी पर चलना है। नहीं, भगवान को कभी मत बताओ कि मैंने ये रास्ता चुना है और मैं इस पर चलना चाहता हूँ। शुद्ध भक्त तो भगवान के सामने आकर सरेंडर हो जाता है, कृष्ण तुम जैसा चाहो मैं वैसा करूँगा, चाहे उसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पर भगवान ऐसे ही से संतुष्ट होते हैं। अतः भगवान शुद्ध भक्तों के लिए अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म ना करके एकमात्र भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। ध्यान से सुनिए आगे श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि परमात्मा के रूप में वे हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और हर एक को अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूर्ण मनोयोग से केवल उन्हीं की दिव्य प्रेमा भक्ति करें। अगर हम पूर्ण रूप से भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अवश्य हमें वास्तविक ज्ञान देते हैं, हमको कुछ नहीं करना, सब वही करेगा। सिर्फ सिंसियरिटी के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान के शरण में जाकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। और जैसे जैसे हम प्रेम और श्रद्धा के साथ जप करेंगे ना, और अपनी इंद्र तृप्ति को साइड में रख के, अपनी इच्छाओं कामनाओं को साइड में रख के भगवान की इच्छा पर चलने का पूरा पूरा निश्चय करेंगे ना, फिर भगवान हमें ऐसी अनुकंपा करेंगे कि हमारे हृदय में, भगवान कहते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा नाशयाम यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन वास्वता। जिनके जो कंटिन्यूस प्रेम के साथ मेरा भजन करेंगे उन पे ऐसी कृपा करूंगा कि ज्ञान के प्रज्वलित दीपक से हृदय में विराजमान अंधकार का सर्वनाश कर दूंगा। ये अंधकार ही तो है जो हमें अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए बाध्य कर देता है, ये अंधकार ही तो है जो हमें ये कहने पर और समझने पर बाध्य कर देता है कि ऐसा होना चाहिए। वास्तव में ज्ञान तो यही है कि कृष्ण तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। जैसा अर्जुन ने कहा, करिषे वचनम तव, आप जो चाहोगे मैं वही करूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई आज्ञा नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, बस तुम्हें प्रसन्न करना है। यही है शुद्ध भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु अभक्त गण ना तो देवताओं जैसे होते हैं न शुद्ध भक्तों जैसे होते हैं, अभी तो वह भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। उन्होंने भगवान के प्रति विद्रोह किया है, इसीलिए उन्हें निरंतर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देवता तो फिर भी कुछ मांगने के लिए भगवान के पास आते हैं, शुद्ध भक्त कुछ चाहते नहीं, भगवान की खुशी चाहते हैं, लेकिन जो अभक्तगण होते हैं वो इन दोनों से अलग होते हैं, वो तो भगवान के पास आते ही नहीं है, सदा भगवान से दूर रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते उन्हें भगवान के प्रति विद्रोह किया है, इसलिए उन्हें निरंतर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता 4.11, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो भगवान ने 4.11 में कही। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एक लाइन में भगवान ने सब कुछ बता दिया कि यद्यपि भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु हैं, किंतु जीव अपनी ओर से भगवान को कम या ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। देवता सकाम भक्त कहलाते हैं, अर्थात वे भक्त जिनके मनों में भौतिक इच्छाएं होती हैं, किंतु शुद्ध भक्त निष्काम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपने निजी स्वार्थ के लिए इच्छाएं नहीं होती। सकाम भक्त स्वहितार्थी होते हैं क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते, अतएव वे भगवान को पूरी तरह से तुष्ट नहीं कर पाते। जबकि शुद्ध भक्तगण अभक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते हैं, अतः वे भगवान को देवताओं के अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि वे जो सकाम भक्त होते हैं वे स्वहितार्थी होते हैं, वो होते हैं भक्त, लेकिन वो चाहते हैं बस भक्त बनना एक अलग बात है और प्रचारक बनना एक अलग बात है। आप भक्त बनकर स्वहितार्थी होते हो और दूसरों के विषय में नहीं सोचते हो तो भगवान को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाओगे। भले एक भक्त सारा दिन जप करता रहे और सारा दिन सेवा करता रहे, लेकिन ये सोचे कि बस मुझे खाली यही करना है, तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी साफ कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है, यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सकाम भक्त स्वहितार्थी होते हैं क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते, अतएव वे भगवान को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते। जबकि शुद्ध भक्तगण अभक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते हैं, अतः वे भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर हम किसी को प्रचार कर रहे हैं और हम खुद भी अगर सही रास्ते पे ना हों तो कितना हम सबके लिए हानिकारक हैं। जब तक हम खुद संतुष्ट नहीं हैं तो हम दूसरों को कैसे प्रचार कर सकते हैं। तो अतः वे भगवान को देवताओं की उपेक्षा अधिक तुष्ट करते हैं। हमें ये देखना है, हमें सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करना है, और जो कृष्ण अगर संतुष्ट हो गए तो फिर किसी और किसी से भय करने की जरूरत नहीं है। हम आज भयभीत हैं, असंतुष्ट हैं, तो इसका कारण ये कि कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है तो फिर भय समाप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान अभक्तों की ओर ध्यान नहीं देते, यद्यपि वे हर एक के हृदय के भीतर शुभेच्छु तथा परमात्मा के रूप में आसीन रहते हैं, किंतु वे उन्हें भी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपनी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं जो धर्म प्रचार कार्यों में लगे होते हैं। तो वैसे तो भगवान अभक्तों की ओर इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सबके शुभ चिंतक हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए जो भक्तगण हैं वो कितना बड़ा रिस्क उठाते हैं, ऐसे अभक्तों का संग करना पड़ता है और उनको भगवान के विषय में बताना पड़ता है, अपनी भक्ति के लिए समय कम निकलता है ना, तभी तो ज्यादा समय जो है ना वो प्रचार में खत्म हो जाता है। तो जैसे तैसे करके अपनी भक्ति करते हैं, फिर कभी सोचते हैं यार इनके साथ इतना मथाकुटी करने से बेहतर नहीं है कि मैं बैठ के भागवतम के बहुत सारे श्लोकास पढ़ूं, रोजाना भगवत गीता पढ़ूं, बहुत है ना अध्ययन करूं, लर्न करूं, ज्यादा से ज्यादा कभी 64 माला करूं तो कभी 100 माला करूं। लेकिन भगवान को संतुष्ट करना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल रास्ता है अभक्तों को भगवान की ओर आकर्षित करना। तो यहाँ जो धर्म प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं, कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया था, किंतु अधिकांशतया वे अपने प्रमाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस तरह वे अभक्तों के प्रति अपनी अहितु की कृपा प्रदर्शित करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना तुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं। यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते थे, सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। भगवान ऐसे दिव्य कार्यों के साथ ही पक्षपात के आरोप से मुक्त रहते हैं और अपने भक्तों के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान समर्थ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वे यदि चाहें तो सारे अभक्तों को चुटकी में हृदय में ज्ञान देकर भक्त बना सकते हैं, है ना। हृदय में तो वो रहते ही हैं और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, फिर क्यों नहीं सबको भक्त बना देते। यदि उनकी इच्छा भी यही है कि वो भौतिक जगत में सड़ते हुए जीवों को नहीं देख सकते हैं, वो सारे जीवों को अपने धाम में लेकर जाना चाहते, तो हृदय में बैठे ना बता देना उनको जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन वो ये श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं, वो अपने भक्तों के द्वारा ये कार्य कराना चाहते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना संतुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं। यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते थे, सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। सकाम भक्त क्या चाहते हैं? वो भक्त होते हैं, वो भक्ति में सफलता चाहते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं और उनको भगवान भक्ति में सफलता दे भी देता। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, निष्काम भक्त हैं, वो ये चाहते हैं कि समस्त जीवों को भगवान की ओर आकर्षित किया जा सके। तो भगवान ऐसे दिव्य कार्यों के साथ पक्षपात के आरोप से मुक्त हो जाते हैं। पक्षपात का आरोप क्या है कि भगवान भक्तों का साथ देते अभक्तों का नहीं देते, लेकिन भगवान भक्तों के माध्यम से अभक्तों को भक्तों में परिवर्तित करते हैं, इसलिए उनका पक्षपात का जो आरोप है वो समाप्त होता है। तो अपने भक्तों के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं कि अब प्रश्न ये उठता है कि यदि भगवान अभक्तों के हृदय में भी आसीत रहते हैं तो फिर वे भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते। इसका उत्तर यह है कि रीढ़ अभक्त उस बंजर या ऊसर खेत की तरह है जहाँ कोई भी कृषि कार्य सफल नहीं हो सकता। जो अभक्त है, जो बिल्कुल डीट है, तो वो ऐसी बंजर जमीन है जहाँ पर कभी भी कोई खेती नहीं हो सकती, तो भगवान का भिन्नांश होने से पृथक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता प्राप्त है, और इस स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अभक्तगण भगवान तथा धर्म प्रचार के कार्य में लगे उनके शुद्ध भक्त दोनों ही के प्रति अपराध करते जाते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप वे ऊसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं, जिसमें उत्पादन कर पाने की कोई शक्ति नहीं रहती। श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं कि अगर हम कंटिन्यूस भक्तों और भगवान की निंदा करते रहेंगे और उनके प्रति अपराध पर अपराध करते रहेंगे, तो फिर कभी भी हम भगवान की ओर आकर्षित नहीं हो सकेंगे, कभी भी हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो ये यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही बहुत सावधान रहने के लिए कहा कि भले हम भक्ति ना भी करें, भक्ति नहीं होती तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी कोई गुरु, कोई सतगुरु की कृपा हो जाएगी, भगवान की हितों की कृपा हो जाएगी तो हम भक्त बन जाएंगे, लेकिन कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सावधान करें, अभक्तगण भगवान तथा धर्म प्रचारक के कार्य में लगे हुए शुद्ध भक्त दोनों ही के प्रति अपराध पर अपराध करते रहते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप वे ऊसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं, जिससे उत्पादन कर पाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो सावधान रहना है तो अपराध करने से रहना, और ये मत समझना कि भक्त सिर्फ वही होते हैं जो सोला माला करते हैं, जो तिलक कंठी लगाते हैं, जो प्रचार करते हैं, ऐसे वैष्णवों का अपराध नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है ना, वो भी भक्त है। तो किसी का भी अपराध नहीं करना चाहिए, किसी का भी निंदा। ये यहाँ पर जो शब्द लिखा ना, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव पचामि, ये अगर इसको डिटेल से देखा जाए ना, तो भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, जिस तरह से मेरे साथ डील करता है, मैं भी वैसे से। और भगवान कहाँ है जानते हो? भगवान वहां है जहां आप बैठे हो, भगवान वहां है जहां मैं बैठी हूँ, भगवान वहां है जहां पर सारे तुम्हारे शत्रु बैठे हुए हैं। सबके हृदय में भगवान नहीं है क्या? भगवान तो कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इसका मतलब है किसी भी जीव के साथ तुम कैसा भी व्यवहार कर रहे हो, वो किसके साथ कर रहे हो? साक्षात भगवान के साथ कर रहे हो। और भगवान ने कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, तुम जिस प्रकार का व्यवहार करोगे मैं इसी तरह से डील करूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम दीजिए, अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दीजिए, अगर आदर चाहिए तो आदर दीजिए, खुशियां चाहिए तो खुशियां दीजिए। ये प्रकृति भगवान का एक स्वरूप है, और हम देखते हैं प्रकृति में हम एक दाना अनाज का डालते हैं तो कितना कितना मल्टीप्लाई होकर हमको मिलता है। उसी तरह से हम यदि अच्छे विचार, पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को देते हैं तो उतना ही मल्टीप्लाई होकर हमको मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का उपकार करके उनको भगवान की शरण में लाने का प्रयास कीजिए, और उसके बदले में भगवान हम पर उपकार करेंगे और हमें ये बताएंगे कि सही रास्ता क्या है। हरे कृष्णा। अगर जीने का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है तो क्या हम इसको इतना सरल समझ सकते हैं कि बहुत ही सरलता से जो रास्ते पे हम जाएंगे भगवान मिलेंगे? भगवान के लिए पूरा सरेंडर करना होगा, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा और भगवान की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करना होगा, तभी भगवान प्रसन्न होंगे, तभी हम पर भगवान की अहितों की कृपा होगी। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, परंतु चाहे सकाम भक्त हो या भगवान के शुद्ध निष्काम भक्त हो, यदि भगवान के लिए कोई भी सेवा की जाती है तो कभी व्यर्थ नहीं होती है। किसी भी भाव से हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवान कहते हैं नेहा भी क्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ये जो धर्म का मार्ग है, इसमें थोड़ी सी भी की गई प्रगति वो हमें महाभय से बचाने वाली है। इसमें कभी कोई नुकसान नहीं होता, कभी कोई घाटा नहीं होता। आप किसी भी भाव से भगवान की शरण में आते हो तो भगवान अवश्य हम पर कृपा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्सामतो विविध कर्म वीरा वराद्ये दानेन चोग्रतमसा दानेन चोग्रतपसा परिचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पित करिहि चित् म्रियते न यत्र पुंसामतो विविध कर्म भिरत्वराध्ये दानेन चो ग्रतपसा परिचर्यया च आराधनं भगवत तव सत् क्रियार्थो धर्मोर्पितः करिहि चित् म्रियते न यत्र। पुंसाम यानी लोगों का, जो लोग भगवान के लिए विविध कर्म अर्थात डिफरेंट टाइप की जो सेवा भगवान के लिए, विविध कर्म अर्थात नाना प्रकार के सकाम कर्मों द्वारा अथवर आद्य यानी वैदिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं यदि भगवान के लिए, क्या करते हैं, दानेन अर्थात दान के द्वारा च तथा उग्र यानी अत्यंत कठोर तपस्या यानी तपस्या करके परिचर्या यानी दिव्य सेवा के द्वारा च भी आराधनम यानी पूजा भगवत यानी भगवान की। अगर ये सारे दान पूजा अर्चना या तपस्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है, भले सकाम भाव से की जा रही है, तो भी तव यानी तुम्हारा सत् क्रियार्थे एकमात्र आपको प्रसन्न करने के लिए धर्म यानी धर्म अर्पित इस प्रकार अर्पित कर ही चित किसी समय भी म्रियते विनष्ट होता है न यत्र मतलब कभी भी नहीं, धर्मोर्पित कर ही चित म्रियते न यत्र, जो भी धर्म के लिए कार्य किया जाता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। अनुवाद, किंतु वैदिक अनुष्ठान दान कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों की आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं लाभ प्राप्त होते हैं, धर्म के लिए कार्य व्यर्थ नहीं जाते, धर्म के ऐसे कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, परम भक्त जो नौ विभिन्न आध्यात्मिक कार्य तथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन इत्यादि द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तड़प भड़क स्वभाव के लोगों के को सदैव अच्छी नहीं लगती। तो ये जो शुद्ध वैष्णवों की जो आचरण है ना, वो हर किसी जो रजोगुणी होते हैं तड़क भड़क स्वभाव के होते हैं उनको यही चीजें अच्छी नहीं लगती कि बैठ के भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान का कीर्तन किया जाए, भगवान का स्मरण। तो वे वैदिक बाह्य अनुष्ठानों तथा सामाजिक धर्म दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से अधिक आकर्षित होते हैं। फिर उनको लगता है कि हमको दान करना चाहिए, हमको तपस्या बहुत मुश्किल वाली करनी चाहिए, और अलग अलग खर्चीले जो कार्य हैं वो उनको ज़्यादा आकर्षित करते हैं। किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि यह है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किए जाएं। श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में भगवान यह मांग करते हैं कि मनुष्य दैनिक कार्यों में जो कुछ भी करता है यथा पूजा यज्ञ तथा दान, उन सब का फल एकमात्र उन्हें ही अर्पित किया जाए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय सत्कुरुः वमत अर्पण। तो परमेश्वर को पुण्य कर्मों के फलों का यह अर्पण भगवान की भक्ति का एक लक्षण है, जिसका स्थायी महत्व होता है, जबकि अपने लिए उन फलों को भोगना केवल क्षणिक ही होता है। भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य स्थाई निधि है और यह भगवान की शुद्ध भक्ति तक क्रमशः उन्नति के लिए अदृश्य पुण्य के रूप में संचित होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर यही कार्य आप करते हो, मतलब यज्ञ तपस्या दान इत्यादि, तो यदि परमेश्वर को पुण्य कर्मों के फलों का यह अर्पण भगवान की भक्ति का एक लक्षण है जिसका स्थायी महत्व होता है, जबकि अपने लिए उन फलों का भोग केवल क्षणिक ही होता है। भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य स्थाई निधि है और यह भगवान की शुद्ध भक्ति तक क्रमशः उन्नति के लिए अदृश्य पुण्य के रूप में संचित होता है। मतलब हम कोई भी कार्य अगर भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भले वो सकाम उसमें करते हैं, इच्छा भले कुछ प्राप्त करने की भी होती है, लेकिन वो अदृश्य पुण्य ऐसा यानी शुद्ध भक्ति के तक पहुंचने के लिए एक एक ब्रिज की तरह है कि धीरे धीरे आसक्ति से अनासक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भौतिक वस्तुओं की कामना के लिए भी यदि हम भगवान के पास जाएंगे तो धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाएंगे और फिर एक न एक दिन परमेश्वर की कृपा से भक्ति के रूप में प्रतिफलित होंगे। अतएव परमेश्वर के निमित्त किए गए किसी भी पुण्य कर्म की संस्तुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की जाती है जो शुद्ध भक्त नहीं है। तो भले शुद्ध भक्त ना हो, लेकिन फिर भी यदि वो भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे 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 वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, कृष्ण कहे आमी बजे और मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। वो बड़े मूर्ख हैं जो अमृत छोड़कर वो विषयी सुख मांगते, इंद्र तृप्ति की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं और आमी बजे मुझे बजते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वो भले मूर्ख है मगर मैं तो चतुर हूँ। आमी विज्ञान विषय की नदीबा, मैं विज्ञान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो मैं उनको भौतिक सुख नहीं दूंगा, क्या दूंगा, स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाया। स्वचरण यानी भगवान के चरणों की भक्ति जो करता है फिर उसे विषय भूल जाता है। जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं कि स्वामी कृतार्थ हम वरम ना मांचे, वो भले ही भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए आए थे लेकिन जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो फिर कोई भौतिक इच्छा बाकी रहती नहीं है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेदम् ओहाय बोध दिशणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थिति तयेषु निमित्तलीला रासाय ते नमः इदं चक्रमेश्वराय शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध दिशणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थिले भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नमः इदं चक्रमेश्वराय शाश्वत स्वरूपम्। शाश्वत मना इटर्नल रूप से, स्वरूप मना दिव्य स्वरूप, महसा महिमा के द्वारा एव निश्चय ही निपीत मतलब विभेदित भेद यानी अंतर, मोहाय यानी मोहमयी धारणा के हेतु, बोध अर्थात आत्मिक ज्ञान, दिशणाय यानी बुद्धि, नमः यानी नमस्कार, परस्मय यानी ब्रह्म को। ब्रह्मा जी भगवान के ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार करते हैं और परब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो शाश्वत ब्रह्म के स्वरूप में है। आगे कहते हैं विश्वोद्भवस्थ, विश्वोद यानी विश्व विराट रूप की भवस उद्भवस मना उसकी सृष्टि स्थिति मना पालन लयशु मना संहार इस भौतिक जगत का पालन संहार और सृजन निमित्त अर्थात उसके हेतु लीला ऐसी लीलाओं से रासाय भोग हेतु ते यानी तुम्हें नम इदम चक्रमेश्वरम नम यानी नमस्कार इदम यानी यह चक्र में चक्रम मनी मैं करता हूँ ईश्वराय परमेश्वर को अनुवाद मैं यानी ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं यानी वास्तव में भगवान का एक शाश्वत स्वरूप है उसमें भी रहते हैं और उनका विभेदित ना किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है तो उनका एक स्वरूप जो है वो ब्रह्म निर्विशेष स्वरूप भी है जो बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है कि वही भगवान का भगवान के स्वरूप का एक प्रकाश है तो उसको जाना जाता है बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं भगवान को नमस्कार करते हैं जो इस भौतिक जगत को बार बार सृजन करते हैं उनका पालन करते हैं फिर लय कर देते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा जीवों से सदैव विभेदित होते हैं मतलब अंतरंग शक्ति के द्वारा जीवों से विभेदित यानी अलग रहते हैं यद्यपि वे स्वरूप सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्विशेष स्वरूप में भी समझे जा सकते हैं तो भगवान का एक स्वरूप निर्विशेष है जो कण कण में है तो उसको भी हम जान सकते हैं अगर बुद्धि मतलब बुद्धि के द्वारा अतएव भगवत भक्त भगवान के निर्विशेष रूप को सादर नमस्कार करते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के निर्विशेष स्वरूप को भी प्रणाम करते हैं ऐसा नहीं कि उसकी निंदा करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि भगवान का एक वास्तविक स्वरूप है ये तो उनका भगवान का प्रकाश है परंतु वो उसको भी प्रणाम करते हैं यहाँ पर रास शब्द महत्वपूर्ण है रासायते नम इदम चक्रमेश्वर तो रास शब्द जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि रास नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है और गर्भोदशाय विष्णु भी अपने उस बहिरंग शक्ति के साथ रास के भोग में लगे रहते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं तो ये रास जो है वो भगवान का बहुत ही परम प्रिय कार्य है तो भले ही वो कृष्ण रूप में आते हैं तो गोपियों के साथ रास करते हैं और गर्भोदशाय स्वरूप में वो अपनी बहिरंग शक्ति इस माया के साथ रास नृत्य में कभी सृजन पालन और संहार करते रहते हैं तो प्रत्येक रूप से ब्रह्मा जी उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो सदैव गोपियों के साथ रास भोग में लगे रहते हैं भले यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं विश्वोद्भवस्थल येषु निमित्त लीला के संसार को उत्पत्ति सृजन और संहार की लीला में लगे रहते हो लेकिन रासायते नमा जो सदैव रास लीला में लगे रहते हो वास्तविक रूप में ब्रह्मा जी को भगवान का बोध है भगवान को जानते हैं इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी उन भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं जो सदैव गोपियों के साथ रासभोग में लगे रहते हैं जिनकी पुष्टि गोपाल तापनी उपनिषद में निम्नलिखित शब्दों में हुई है परार्धन्ते सो बुध्यत गोपवेशो मे पुरुषः पुरस्तादा विभर विर्भभूत भूवा भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंग शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है जब भगवान को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि प्राप्त हो जाएगी ना तभी हम जीव और भगवान के बीच का जो अंतर है उसको समझ पाएंगे, जो इस बहिरंगा शक्ति से भिन्न है, जिसके द्वारा वे भौतिक सृष्टि को संभव बनाते हैं। भगवान सदैव रासलीला में लगे रहते हैं, लेकिन जीव यदि ये कार्य करते हैं तो उनके लिए अलग विधान है, लेकिन भगवान जो है वो जीव नहीं है, साधारण नहीं है। और भगवान और बीच जीव के बीच का अंतर कब समझ में आएगा? जब उनकी अंतरंग शक्ति को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होगी। और ये बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। जो कंटिन्यूस प्रेम के साथ मेरा भजन करेंगे उसी को मैं वो बुद्धि दूंगा जिससे वो मुझे समझ सकते हैं। तो वास्तव में भक्तों, हमारा कार्य तो केवल इतना ही है कि प्रेम से भगवान का भजन करते रहें। भगवान को जो हमारे लिए आवश्यक होगा वो बुद्धि हमें स्वयं प्रदान करेंगे, और जिस तरह से हमें निर्णय लेना होगा वो निर्णय के लिए बोध भगवान स्वयं देंगे। हमको पूरी सिंसियरिटी के साथ भगवान की शरण को स्वीकार करके प्रेम से भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ।